ओम शांति। शिव का दिव्य गान श्रीमद् भगवद गीता अध्याय एक 40 श्लोक तक हो चुका था, आज उसके आगे 41वां श्लोक। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो श्लोक 41 से लेकर तो 44 तक क्या सुना? हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्री अत्यंत दूषित हो जाती है, प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः। इसलिए हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, नरके नियतम, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 1908 में सिगमंड फ्राइड का एक मित्र अर्नेस्ट जोन्स, पहली बार उसने एक नए शब्द की रचना की थी जिसका नाम था रैशनलाइजेशन, अर्थात जो हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं या कह रहे हैं उसकी तर्कयुक्त व्याख्या करना, टू रैशनलाइज, टू जस्टिफाई। जो भी हमने किया वो करने के पीछे ये कारण था। मनोविज्ञान में डिफेंस मैकेनिज्म है बहुत सारे, उस पर सिगमंड फ्राइड की बेटी इमा फ्राइड ने भी बहुत काम किया था और ऐसे बताया है 10-12 डिफेंस मैकेनिज्म। व्यक्ति जो भी करता है उसको रैशनलाइज करने के लिए, तर्क संगत बताने के लिए इन डिफेंस मैकेनिज्म को उपयोग में लाता है। जैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, इनकार कर देना, ये हमने किया ही नहीं है। दूसरा एक डिफेंस मैकेनिज्म है ये रैशनलाइजेशन। तीसरा एक डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। एक है रिप्रेशन, दबा देना, जो घटना हुई है वो यदि बहुत ही दुखी करने वाली है तो जो दुख उत्पन्न हुआ है उस दुख को मन में ही दबा देना, रिप्रेस कर देना, दमन कर देना उस भाव का, उस भावना का। कभी कभी प्रोजेक्शन करता है व्यक्ति, जैसे उस परिस्थिति में कभी कभी रिएक्शन करता है, कभी कभी दूसरों पर डाल देता है, कभी कभी रिएक्शन करता है जैसे दूसरे ने व्यवहार किया उस परिस्थिति में, उसी को कॉपी करता है और उस तरह से व्यवहार करता है। रिएक्शन, प्रोजेक्शन, रिप्रेशन रिग्रेशन कभी कभी उसी परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार करता है जैसे उसने पहले किया था जब वही परिस्थिति पहले भी आई थी। ये सारे साइकोलॉजी के टर्म्स है, रिप्रेशन रिग्रेशन डिनायल रैशनलाइजेशन। तो कभी कभी वो नार्कोटिजेशन करता है, नार्कोटिजेशन मतलब ड्रग्स की ओर चला जाता है जो चीजें हो रही है उनको भूलने के लिए। इंट्रोजेक्शन, ऐसे अलग अलग टर्म्स है। यहां पर अर्जुन को जो हो रहा है उसको कहा जाता है रैशनलाइजेशन। वो कह रहा है, वो खोज कर रहा है, छानबीन कर रहा है कि युद्ध अगर न करूं तो ये चीजें होगी, अगर युद्ध करूं तो ये चीजें होगी। वास्तव में ये सारे जो दलीलें वो दे रहा है उसको इन चीजों की आज तक कभी याद नहीं आई थी। और ऐसा भी नहीं कि वो पहली बार युद्ध कर रहा है, इसके पहले उसने कई युद्ध किए हैं, युद्ध करने में निष्णात है। परंतु इस युद्ध में वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है उसके अंदर मोह उत्पन्न हुआ है, ममता उत्पन्न हुई है, परंतु वो ये नहीं चाहता है कि मुझे दूसरे कहे तुम कायर हो। इसके लिए वो दलीलें पेश कर रहा है, अपने आर्गुमेंट को रैशनलाइज कर रहा है। और रैशनलाइजेशन के लिए क्या कर रहा है, ऐसे धार्मिक तथ्य बता रहा है कि जिससे लगे कि ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही करना चाहिए। परंतु ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो जो भी कहता है करता है उसको रैशनलाइज करता है, ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि ये राइट है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कारण है। यहां अर्जुन कारण बहुत सारे दे रहा है, वो कह रहा है अगर ये युद्ध हो जाए तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अभी तक सनातन धर्म कहां गया था, अभी तक तो उसको युद्ध करना था, अभी युद्ध के एन मौके पर उसे सनातन धर्म की याद आ रही है। अभी वो कह रहा है कि कुल का नाश हो जाएगा, त्रिया दूषित हो जाएगी कुल की, फिर वर्ण संकर उत्पन्न होगा, वर्ण संकर अर्थात क्रॉस ब्रीडिंग। संतति की चिंता भी हो रही है, अभी तक संतति की चिंता नहीं थी, अभी तक तो युद्ध करना चाहता था, अभी तक तो कौरवों को मारना चाहता था, अभी तक तो अपनी जमीन उसे फिर से लेनी थी, अपना राज्य उसे लेना था, अभी तक तो उसे द्रौपदी के खुले हुए केश दिखाई दे रहे थे, अभी तक वो कुछ भी भूला नहीं था जो कुछ दुर्योधन ने किया। अभी अचानक उसके मन में धार्मिक टेंडेंसीज उत्पन्न हो गई है और वो कहता है कि मैं यदि युद्ध करूं तो इस युद्ध से कुल का नाश होगा, संस्कृति का हनन होगा। वो कहता है वर्ण संकर होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियों के दूषित होने से, वर्ण संकर होने से पूरा सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वो जो कह रहा है, तर्कयुक्त है, परंतु वो रैशनलाइज कर रहा है। और मनुष्य जब रैशनलाइज करता है तो वो जो भी सोचता है उसको वो ठीक ठाक बताने का पूर्ण प्रयत्न करता है, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये कारण थे। और जो वो सत्य सोचता है, जो वो सही सोचता है, जो वो चाहता है वही करना चाहता है और उसी को रैशनलाइज करता है, फिर दलीलें चाहे कैसी भी कहां से भी इकट्ठा करे, उसे क्या लेना देना संतति की। तो कभी उसको विराट के उस युद्ध में तो कभी याद नहीं आई जब उसने अकेले ने सभी कौरवों को हरा दिया था, इसके पहले इतने सारे युद्ध उसने किए, तभी उसको कभी भी वर्ण संकर की चिंता नहीं हुई। क्रॉस ब्रीडिंग अर्थात स्त्रिया पतन हो रही है। क्या कह रहा है वो यहाँ पर कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से अधर्मा भिव वा कृष्ण अभिवात, अभिवात अर्थात प्रमुख हो जाने से, बढ़ जाने से, अधर्मात अभिवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, प्रदूषित कुलिषित कलुषित हो जाएगी संसार ये इस कुल की स्त्रिया, और ऐसी स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय ऐसी दूषित हुई स्त्री जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर का दोष उत्पन्न होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा। अब उसको शायद क्रॉस ब्रीडिंग की उसके जो आइडियाज है उसके बारे में उसे पता नहीं है। वर्ण संकर, एक जाति दूसरे जाति के साथ विवाह करे, पहले इसमें बहुत बड़ा आक्षेप था, ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर विवाह होने चाहिए, एक ही जाति के अंदर। ये अगर हो गया तो क्या कह रहा है, संकरो नरक यैव कुल ज्ञानम कुलस्य च पतंती पितरो हेशाम। उसको अब पितरों की चिंता होने लगी है। यहाँ पर अभी तक पितरों को कभी याद नहीं किया, अब पहली बार अपने पूर्वजों की चिंता कर रहा है कि उनको पिंड कौन देगा, पितर तर्पण कौन करेगा उनका, क्योंकि सारा कुल नाश हो जाएगा। तृप्त पिंडो द क्रिया, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे। अभी उसको पितरों की चिंता होने लगी है, संतति की चिंता होने लगी है। इसको कहा जाता है कनिंगनेस ऑफ रीजन, चालाकी, तर्क की चालाकी। वो अंदर से भयभीत है, अंदर से मोहग्रसित हो रहा है, अंदर से नहीं चाहता है कि मारूं, परंतु ऊपर से ये भी नहीं दिखाना चाहता है कि लोग मुझे कहे तू कायर है। इसके लिए क्या कर रहा है, रैशनलाइज कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्राइड का रैशनलाइजेशन का प्रयोग कर रहा है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वत, शाश्वत जो धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरके नियत वास हो। उसे अब नरक और स्वर्ग की चिंता हो रही है। अभी तक कभी याद नहीं किया नरक को ना ही स्वर्ग को, पर अभी नरक याद आ रहा है। ऐसा हम सुनते आए है, ये उसका अपना अनुभव नहीं है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा उस समय के लोगों का कहना है। उस समय के लोगों का कहना था, द्वापर युग के शुरुआत में लिखी गई है। अब भी लोग ऐसा ही सोचते हैं, अभी भी चले जाओ तो संसार में यही मान्यताएं है। हाँ, वर्ण संकर एक बहुत बहुत, अभी भी लोग शंकराचार्य से लेके जो सब इसके विरुद्ध में है कि कुल के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो संतति खराब हो जाएगी। जबकि साइंस कुछ और कहता है, साइंस के जो सिद्धांत है वो तो कुछ और ही कहते हैं। सबसे पहले तो बहन भाई के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए तो दोष होगा। एक है परिवार में जो उससे अधिक ज्यादा बुद्धिमान है, जो सबसे बुद्धिमान होगा वो कहेगा कि बहन भाई के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए। थोड़े और बुद्धिमान होंगे वो ये भी सोचेंगे कि चचेरा भाई और चचेरी बहन के बीच में भी नहीं होनी चाहिए। वो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान होंगे वो तो ये सोचेंगे कि एक ही जाति के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। वो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान वो कहेंगे कि इस देश की उधर होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। और जो अधिक बुद्धिमान होंगे वो कहेंगे इंटर प्लेनेटरी मैरिज, अगर कोई दूसरे प्लेनेट पर कोई रहता है, क्योंकि देखा गया है कि जो उसी प्रजाति में विवाह होते हैं तो शुद्ध प्रजातियां उत्पन्न होती है, परंतु उन शुद्ध प्रजातियों में विकास नहीं होता है। आदिवासी बस वहीं रहते हैं, वहीं अविकसित रहते हैं, डेवलप नहीं हो पाते। तो यहाँ अर्जुन जो कह रहा है सब झूठ कह रहा है, सब उसका डर है जो बाहर निकल रहा है। वो नहीं चाहता है कि वो उसको कोई कावट कहे कि देखो तुम मोहग्रसित हो गए, देखो तुम भयभीत हो गए, देखो तुम अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर भाग रहे हो। वो कह रहा है कि नहीं नहीं कृष्ण सुनो, कुल का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर से संतति नष्ट हो जाएगी, स्त्रिया दूषित हो जाएगी, पाप फैल जाएगा और पिंड अधोगति होगी, पितरों की चिंता होने लगी है उसे। इसी रैशनलाइजेशन को एक दूसरी भाषा में कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड ने कहा एक्सक्यूज मेकिंग, जिसे बाबा अव्यक्त मुरलियों में कहते हैं बहानेबाजी। लेना देना कुछ नहीं है। दो प्रकार के रैशनलाइजेशन होते हैं, एक होता है कलेक्टिव रैशनलाइजेशन, एक होता है इंडिविजुअल रैशनलाइजेशन। हाँ, कभी कभी रैशनलाइजेशन काम भी आता है। मेडिकल फील्ड में भी बहुत बड़ी थियोरी है रैशनलाइजेशन की। पेशेंट मरता है, कहते हैं उसका ही दोष था, उसको बीमारी ऐसी थी, हमने तो सब किया, डॉक्टरों की गलती है, स्टाफ की गलती है, नर्सेस की गलती है, परंतु उसकी बीमारी भी तो बहुत ज्यादा थी, वैसे भी तो मरना ही था। अब जो गलती हुई है वो रिलेटिव्स को बताने से क्या फायदा, वैसे भी वो मर गया है। मेडिकल फील्ड की बहुत बड़ी लिस्ट है रैशनलाइजेशन की। क्यों रैशनलाइज? व्यक्ति अपने आप को रैशनलाइज करता है, तर्क सिद्ध व्याख्यान करता है, और जिससे सिद्ध करता है कि मैंने ये जो किया ना वो राइट है। ऊंट पक्षी उड़ो तो क्या कहता है, रैशनलाइज करता है, क्या करता है, क्या कहता है, मैं ऊंट हूं। ऊंट कैसे उड़ेगा? और उसको कहो चलो तो क्या कहता है, मैं पंछी हूं, चलूंगा कैसे? दोनों तरफ से रैशनलाइज करता है। वो कौन, लोमड़ी ना, खट्टे अंगूर, जाती है देखती है कि अंगूर लटके हुए हैं, तो छलांग लगाती है, बहुत कोशिश करती है, परंतु हाथ में अंगूर नहीं आते क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचे हैं। और फिर इधर उधर झांक के देखती है, किसी ने देखा तो नहीं, और फिर जाती है, परंतु एक खरगोश ने देख ही लिया चुपके से, उसने कह दिया कि चाची अंगूर कैसे थे, जबकि उसने देखा है कि अंगूर इसको मिले नहीं। वो कहती अंगूर तो मैंने ले लिए, अंगूर बहुत ही खट्टे थे, रैशनलाइज किया। परंतु यही कहानी खत्म नहीं होती। उसके बाद फिर लोमड़ी ने सोचा अब मैं कैसे भी करके अंगूर को प्राप्त करूंगी। जिम्नेशियम ज्वाइन किया, कसरत की, अपने मसल्स बनाए, और फिर उसको शक्ति आ गई थोड़ी, और उछल कूद की, प्रैक्टिस की, और फिर एक दिन जाके अंगूर तोड़ी लिए, और फिर देखा कि अंगूर तो वास्तव में खट्टे हैं, परंतु फिर वो कहती है कि अंगूर बहुत मीठे हैं। फिर वैसे कैसे कहेगी कि अंगूर खट्टे हैं? फिर वो कहती है कि हाँ अंगूर तो बहुत मीठे हैं। रैशनलाइज। अर्जुन को ना तो वर्ण संकर से कुछ लेना देना है, वो तो अपने तर्क को, अपने लॉजिक को, अपने रीजनिंग को बहुत ऐसा बताना चाहता है कि कृष्ण कहे हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम राइट कह रहे हो, ये तो बहुत ही राइट है। परंतु कृष्ण को भी पता है ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, वो हंस रहा है अंदर ही अंदर। हाँ उसका तर्क यदि वास्तव में उसे युद्ध न करना होता और वास्तव में ऐसा होता तो वो शायद मान भी जाता, परंतु ऐसा है नहीं। ये उसकी झूठी दलील है, फॉल्स रीजनिंग है, उसका कनिंगनेस है। तो इस फिनोमिनन, इस सिद्धांत को कहा जाता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इन ब्राह्मिंस, ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण आत्मा कहां कहां रैशनलाइज करती है, ऐसी 10 बातें। सबसे पहला रैशनलाइजेशन वो करती है चिंतन में। हमारा चिंतन नहीं होता, हमारी बुद्धि कम है, हम भाषा हमको नहीं आती, हम भाषा नहीं जानते, हमने पढ़ाई बहुत कम की है, हम अनपढ़ है, हमने इतना सारा नहीं पढ़ा है, हमको पता नहीं है, हम अभी भी आए हैं ज्ञान में। बहानेबाजी, इसको बाबा के ही शब्दों में कहते हैं एक्सक्यूज मेकिंग, लेम एक्सक्यूजेस। उसी को कभी कभी बाबा चालाकी भी कह देते हैं, चालाकी भी आ जाती है, बच्चे चतुर होते हैं बहुत। तो सबसे पहली बहानेबाजी या रैशनलाइजेशन है चर्निंग, हमारा चिंतन नहीं होता है। अगर कोई कह दे कुछ तो रात भर चिंतन करते हैं उसके विषय। कोई कह दे कि तुमने जो ये किया ना बहुत ही गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, सोचते रहते कैसे उसको दूसरे दिन उत्तर दूं। ढूंढते हैं उसने भी तो ऐसा किया था, उसको बताऊंगा कि तुमने भी ये जो किया कोई, ये कोई बहुत अच्छा नहीं था। वहां कहां से चिंतन आ गया? किसी ने गाली दे दी, किसी ने अब्यूज कर दिया, किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने हमारी गलती दिखा दी, रात भर मनन चिंतन करते हैं। वो सारा चिंतन यदि लिखा जाए तो एक ग्रंथ लिखा जा सकता है रातों रात, यदि उसे रिकॉर्ड कर दिया जाए तो। सिगमंड फ्राइड ने, जैसे ही उसके मित्र अर्नेस्ट जोन्स ने ये शब्द कॉइन किया, इसकी रचना की, वो शब्द तुरंत प्रयोग किया, और उसने उसके जितने पेशेंट्स थे, न्यूरोटिक पेशेंट्स, उनको स्टडी किया और उसने देखा ये कुछ ना कुछ कारण जरूर देते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये कारण है, सिगरेट पी रहे क्योंकि ये कारण है, दारू पी रहे क्योंकि ये कारण है। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं गलत हूं, नेवर। हर एक अपना कारण एक तैयार है, लेट आ रहे कारण तैयार है, हर चीज के लिए कारण तैयार है। हर एक ने सोच के रखा है अंदर ही अंदर एक कारण, अपने आप होता है। तो सबसे पहला है चिंतन नहीं होता है हमारा, और उसके सारी दलीलें, ये कारण है, हमारा चिंतन नहीं होता। मुरली आ रही है, मुरली जा रही है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। डायरियों में भरे हैं पेजेस में सब, पर हमारे हाथ में नहीं है कुछ, क्योंकि चिंतन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला रैशनलाइजेशन कहां करते हैं? चिंतन। दूसरा रैशनलाइजेशन, टाइम नहीं है, हम इतना बिजी है, हमको इधर भी काम करना पड़ता है, नीचे भी जाना पड़ता है, यहां भी देखना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है। तुम्हारे जैसा थोड़ी ना, चार से पांच से नौ से पांच ड्यूटी कर लो चलो घर। हम 24 आवर्स हमारा ऑन कॉल रहता है, कभी भी हमको बुलाया जा सकता है, कभी भी कहीं पर भी कोई भी सेवा आ सकती है, हमको जाना पड़ता है। कभी यहाँ सेवा करनी पड़ती, कभी सेंटर जाना पड़ता है, कभी कोई बुला लेता है, कोई महारथी बुला लेता है, हमको टाइम कहाँ है? पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, टाइम भी तो चाहिए ना। ड्यूटी में ही हमारा इतना टाइम जाता है, 8 घंटा तो ड्यूटी में जाता है, 4 घंटा ट्रेवलिंग में जाता है, कहां से टाइम निकाले? और तुम कहते हो मुरली 4 बार पढ़ो और जो यहां पढ़ रहे हो उसको और एक बार पढ़ो, जो अव्यक्त वाणी एक्स्ट्रा तीव्र पुरुषार्थ वाली, पिछला भी याद रखो, वो भी करो, क्या क्या करे? कहां तक करे? विनोद भाई को बड़ी खुशी हो रही है सुनकर, इज राइट। तो व्यक्ति रैशनलाइज करता है, ऐसा कोई नहीं कहता है कि मुझे ये मेरे से हो, मुझे नहीं करना है, ये नहीं कहेगा। नहीं कहना है मतलब अरे तुम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं कहेगा। कोई कारण देगा, बहाने देगा, एक्सक्यूजेस देगा, प्रिटेक्स्ट करेगा। उसके भी दो रूप है, जैसे कहा एक इंडिविजुअल करता है, एक कलेक्टिव रैशनलाइजेशन होता है। सेलिब्रिटी कल्चर कलेक्टिव रैशनलाइजेशन, ये एक दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें भी हाँ सपोर्ट करने वाले मिलते हैं। सामूहिक रैशनलाइजेशन एक होता है, व्यक्तिगत रैशनलाइजेशन। तीसरा है लेट पहुंचना, टाइम पर नहीं आना, टू बी लेट। लेट क्यों आए? तो ये कारण थे लेट आने के कारण, और उसको तर्क संगत दिखाना कि ऐसा ही है। चौथा भोजन, भोजन में क्या रैशनलाइज करते हैं? नहीं, वो रैशनलाइजेशन नहीं, कौन से बहानेबाजी भोजन की, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, डॉक्टर ने खास कहा है, और पनीर खाने के लिए। रैशनलाइजेशन फॉर ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग के लिए रैशनलाइजेशन। अरे कैसे करते, ब्रह्मा भोजन था। अभी अभी एक पेशेंट को हमने एडमिट किया, 7 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थे लूज मोशन के लिए, ठीक है। उसके दूसरे दिन ही हम उधर से आ रहे थे कार्ड से, तो वो भाई जी बैठे थे, हमने कहा कहाँ गए थे? बोले उधर खास एक ब्रह्मा भोजन था। मैंने बोला अभी तो आप शिगेलोसिस अभी अभी डिस्चार्ज हुए, कल ही तो डिस्चार्ज हुए। अरे नहीं, वो इतने समय से बुला रहे थे, कैसे मना करते, और मैंने थोड़ा ही खाया वैसे तो। थोड़ा क्या होता है, व्हाट इज थोड़ा? थोड़ा कुछ होता है क्या? थोड़ा कुछ नहीं होता है, जो होता है पूरा ही होता है। रैशनलाइजेशन फॉर ओवर ईटिंग, खाते रहता है, मिली डोली की गई अंदर। रैशनलाइजेशन फॉर स्लीप, चौथा या पांचवा, ओवर स्लीपिंग। मेरे थकान सी रहती है शरीर में, पता नहीं सुस्ती सी रहती है, मौसम का प्रभाव है, पानी का प्रभाव है, क्या है पता नहीं, पर ऐसा लगता है थोड़ा सा लेट जाओ, अमृत वेला हो जाए, गाड़ी खड़ी रहती है सामने ही, बैठो वहीं से नींद चालू, हॉस्पिटल वालों की बात कर रहे वहीं पर थोड़ा सा काम आज का पूरा हुआ, चलो अभी कार गाड़ी में बैठो और जाते ही सीधा आराम, 6:30 बजे नींद खुलेगी सीधा, 6:30 बजे नींद खुलेगी सीधा, फिर आ जाओ मुरली में। सुस्ती सी रहती है पता नहीं क्यों, कोई अच्छी सी दवाई दे दो डॉक्टर साहब, सुस्ती चली जाए बस। पता नहीं शायद ज्यादा काम हो रहा है, क्या ज्यादा काम हो रहा है, हाँ थोड़ा सा ये उठा लिया था वो उठा लिया था, मेहनत थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। कोई हमारा पूरा एक बार सारा एक बार टेस्ट करा लो, अरे अभी तो कराया था 2 मास पहले, एक बार फिर से करा ही लो, कुछ तो पता चले क्या हो रहा है। ओवर स्लीपिंग, रैशनलाइजेशन फॉर धारणा, धारणाएं नहीं हो पा रही है, श्रीमद पर नहीं चल पा रहे। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं श्रीमद पर नहीं चलता हूं, कहता है कोई कोई ब्राह्मण? ना 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 ना, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, रैशनलाइज करता है, ये कारण है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये है। जैसे कोई असफलता हो, कोई चीज कर रहे है वो नहीं प्राप्त हुई, वैसे मुझे चाहिए ही नहीं थी, ये है रैशनलाइजेशन, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। धारणाओं में रैशनलाइज करते हैं, ये करना है मतलब करना है, परंतु ये उसे भी पता है परंतु हो नहीं रही है, परंतु मानेगा तो इन थोड़ी ना ऊपर से, तो क्या कहेगा फिर, ये कारण है। रामा तो एक बहुत बड़ा रैशनलाइजेशन का ले लेता है, ढाली बना के रखा है। अगला है प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को रैशनलाइज करता है कि ये जो है ना ये इम्प्यूरिटी नहीं है, हमने तो ऐसे ही देख लिया, टीवी चालू था हम खड़े रह गए, मूवी चालू थी थोड़ी सी देख ली, बाबा की याद में खा लिया, ऊपर एक भाई बता रहे थे ना, हम टीवी देखते देखते भोजन, नीचे देखते हैं तो बाबा को याद करते, ऊपर देखते हैं तो टीवी देखते, फिर नीचे देखते हैं तो बाबा की याद में भोजन करते, फिर ऊपर देखते हैं तो बैलेंस देखता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कितना आत्माभिमानी स्थिति है, वो जो टीवी पे चित्र दिख रहे हैं उनमें मैं आत्मा देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी आत्मा है ये भी आत्मा है। सकाश रैशनलाइजेशन प्यूरिटी में भी, फिर रैशनलाइजेशन है टाइम प्लेस पर्सन सर्कमस्टांसेस। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बच्चे कहते हैं बाबा व्यक्ति ऐसे थे, इसने ऐसा किया, परिस्थिति ऐसी थी, ये ऐसा था, बाप कहते हैं बच्चे ऐसा हो या वैसा हो तुम्हें तो बाप जैसा बनना है, ये नहीं कहो कि ये ऐसा था ये वैसा था, तुम्हें तो बाप जैसा बनना है। ये सब बहानेबाजी की भाषा, बहानेबाजी का खेल, बहानेबाजी की बाजी अब बंद करो और उड़ती पलकला की बाजी करो। अव्यक्त महावाक्य, टीचर से मुलाकात, अभी अभी मुरली चली थी, यही जो अभी वाक्य कहे 7-8 महीने पहले, इसलिए बहानेबाजी नहीं करनी है कि व्यक्ति अच्छे नहीं है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, सब मेरे विरोध में है, ये यहां तीव्र पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में, पहले तो इससे बाहर निकलना है, ये डिपार्टमेंट चेंज करना है, या तो हम चेंज हो या ये चेंज हो जाए, ये ठीक नहीं है। व्यक्ति टाइम समय अनुकूल नहीं है, कौन से समय का इंतजार है, द टाइम इज नाउ द टाइम इज हियर, यही टाइम है, इसी पर तीव्र पुरुषार्थ हो सकता है, इसी में इसी सब कुछ विरोधी है, उसी में तीव्र पुरुषार्थ हो सकता है। इस समय का इंतजार नहीं करो कि जब कुछ सब अच्छा हो जाए, सारे डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जितना कोशिश करोगे निकलने की, आज की मुरली मंजूबेन क्या, उतना ही फंसते जाओगे, वो कभी नहीं होगा, हमें ही करना होगा, जहां है वहीं से स्टार्ट करो। फिर कहते मोटिवेशन नहीं आ रहा है, उस दिन किसी ने प्रश्न पूछा ना, डिवाइन कॉल नहीं आ रहा है, क्या करें, कब आएगा। एक विदेश के ऑथर ने लिखा है कि ये जो मोटिवेशन और डिवाइन कॉल इज अ ट्रैप, जब मोटिवेशन नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है, करना चालू करो, करते करते ही प्रेरणा आएगी। वेट नहीं करो कि कोई पुकारेगा, कोई प्रेरणा देगा, कोई मोटिवेशन आएगा, कोई ऐसी इवेंट होगी, फिर हम एकदम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। ये सब कुछ नहीं, करते जाओ बस। मोटिवेशन इज अ ट्रैप, यू डू इट बाय डूइंग, कीप ऑन डूइंग। अभी से करना चालू करो, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जिन व्यक्तियों के साथ हो, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगी, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे और ना ही परिस्थिति बदलेगी। परिस्थिति वही रहेगी, सेंटर वही रहेगा, डिपार्टमेंट वही रहेगा, घर वही रहेगा, ऑफिस वही रहेगा, कॉलिग्स वही रहेंगे, बॉस भी वही रहेगा। बदलना हमको है, हम बदल जाए तो वो अपने आप बदल जाएंगे। इसके लिए टाइम, प्लेस, पर्सन, सर्कमस्टांसेस में रैशनलाइजेशन नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा नहीं, तुम्हें ऐसा वैसा नहीं, तुम्हें बाप जैसा बनना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट रैशनलाइजेशन है असफलता। असफलता मिली, क्यों मिली? ये कारण थे, हमने तो सब ठीक किया था, इसने गड़बड़ कर दी टाइम पर, इसके वजह से हुआ, बाकी तो सब अच्छा ही चालू था, पर ये ना होता तो सफलता मिलनी ही वाली थी। असफलता के लिए रैशनलाइज करना, ये भी एक रैशनलाइजेशन है। अगला, अगला क्या? ओके, और एक लास्ट बताओ। कहां व्यक्ति अपने आप को तर्क संगत सिद्ध करने का प्रयत्न करता है? संबंध में, हाँ, रैशनलाइजेशन इन रिलेशनशिप, उसमें क्या संबंध निभाना ही पड़ता है, परंतु है मोह, है विकार, है काम, है वासना, है अटैचमेंट, है ममत्व। अर्जुन का ममत्व है, अर्जुन का मोह है, पर वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा मोह है, वो ऊपर से कुछ अलग अलग बातें बता रहा है, झूठी, फॉल्स, सब्स्टिट्यूट, परिपूरक, पर अंदर से कुछ और ही मोह धक्के दे रहा है, सोचता है ये सब छोड़ो, पर ये भी नहीं चाहता है कि लोग कहे तू कायर है, रणछोड़ है, ना ना ना, ये नहीं। ऐसा बताना है कि बिल्कुल रैशनलाइज हो, तर्क संगत लगे, दूसरे भी एक्सेप्ट कर ले इसको कि हाँ कृष्ण कहे कि भाई वेरी गुड, तुम ये जो कह रहे हो ना बहुत अच्छा। इसके लिए जब गीता, इधर ये दोनों का संवाद चल रहा होता है, उधर धृतराष्ट्र इतना खुश होते हैं अंदर ही अंदर कि कितना अच्छी बातें कर रहा है अर्जुन, यही तो वो चाहता था कि चुपचाप हार मान ले, पर उसे तो ये पता ही नहीं था ये अज्ञात तत्व बीच में आ जाएगा कृष्ण और सारा खेल को बिगाड़ देगा। तो रिलेशनशिप में रैशनलाइज करता है व्यक्ति, ये तो हमने बताया, अब आप बताओ अगले 10 कहां कहां रैशनलाइजेशन करता है। रैशनलाइज बहानेबाजी, सिंपल भाषा में, बाबा की भाषा में, बहाने कहां कहां बनाते हैं? योग के बहाने, हाँ ये भी एक बहुत है, उसमें दो, एक अमृत वेला और नुमा शाम का योग, दो है। अमृत वेला जो कर लेते हैं वो नुमा शाम के योग के लिए बहाने जरूर बनाते हैं। नुमा शाम के योग में ही घूमने निकलते हैं 6:30 बजे नक्की का राउंड, वो टाइम किस लिए है? घूमने के लिए है या योग करने के लिए? विनोद भाई किस लिए है वो टाइम? हाँ इसलिए, अगर बाहर दिखे तो साथ में ही चलना फिर अंदर हमारे, ठीक है ना? पर कुछ टाइम फिक्स दिए हुए है, चाहे 7 से 7:30 फिक्स कर लो, या 6:30 से 7 फिक्स कर लो, या 6:30 से 7:30 फिक्स कर लो, या 6:30 से 8 तक फिक्स कर लो, जिसको जो करना है करे, परंतु वो टाइम फिक्स होना चाहिए। इसमें फिर बहाने बहुत सारे दिए जा सकते हैं, एक्सरसाइज करेंगे हमको टाइम नहीं मिलता है, फिर लोग बैडमिंटन भी खेलते हैं वो टाइम पर, इधर योग का इंटरनेशनल योग चालू है, उधर बैडमिंटन भी चालू है और बाबा की याद नहीं कर रहे हैं, वो तो सारे रैशनलाइजेशन है ना। जैसे अर्जुन तर्क दे रहा है, संतति का क्या होगा, तर्पण कौन करेगा, उनकी अधोगति हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिड जन्म लेंगे, ये हाइब्रिड के वजह से तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, ये इसका ख्याल उसको आज तक नहीं आया, इतने बड़े महाभारत में 1000 युद्ध लड़ चुका है वो, युद्ध के लिए तो प्यासा है हमेशा, और कब से कौरव के विरुद्ध, तो पर यहां ये कोई सही कारण नहीं है, झूठे कारण दे रहा है।
कारण पैदा क्यों
होगा? रैशनलाइज करता है व्यक्ति अपने आप को। यही रैशनलाइजेशन जो है ना, ये डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। या तो रिप्रेस करता है, या तो जो बताया पहले 10-12 रैशनलाइज डिफेंस मैकेनिज्म है, सुरक्षा कवच अपने अंदर धारण करता है। कभी कभी हाँ, रैशनलाइजेशन काम में भी आता है। कभी कभी एक डिफेंस मैकेनिज्म है सब्लिमेशन, एक है एक्सेप्टेंस, एक है करेज, सीख लेना, परिस्थिति को स्वीकार कर लेना कि भाई हमारी हार हो गई, अब हम प्रयत्न करेंगे। पर एक है कि बहाने बनाना, नहीं नहीं हमारी हार हुई नहीं है। मॉरल विक्ट्री गुजरात में, पता होगा ये स्टेटमेंट कांग्रेस का, हमारी मॉरल विक्ट्री हुई है, नैतिक जीत। ये रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको। तो ये करता क्यों है, ये बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है मन की, कि मन उसको डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कभी दूसरों को ब्लेम करेगा, प्रोजेक्शन करेगा, कभी रिप्रेशन करेगा, कभी रिप्रोडक्शन करेगा, पुरानी जो चीज है उसको इधर वैसे के वैसे फिर से वैसा ही। वो जिस तरह से बिहेव करता है, मनुष्य का जो बिहेवियर है, उसकी सूक्ष्मता से आप स्टडी करो तो उसमें इतनी सारी परतें हैं कि जो व्यक्ति एक जगह इतना निर्भय है, वो एक जगह एकदम भयभीत हो जाता है परिस्थिति से, जिसे बाकी चीजों से बिल्कुल भय नहीं लगता, उसे एकदम से भय लगता है कि दूसरों ने मेरा विरोध कर दिया, दूसरों ने मेरे पर गलत निगेटिव कॉमेंट्स कर दिए, क्रिटिसाइज कर दिया, वो सहन नहीं कर पाता। बाकी सब सहन कर लेता है, ठंडी सहन कर लेगा, भोजन ना मिला तो चलेगा, परंतु 10 लोग मिलकर आकर उसको कह दे तुमने ये जो क्लास करा ना बहुत ही घटिया था एकदम, कहां से किया, ये कोई आइडियाज है तुम्हारे, कहां से लाई थी आइडियाज, तुम्हारा चिंतन तो एकदम ही बेकार है, क्लास इधर करो और उसके बाद में आशीष भाई आपको मैसेज आ जाए तो क्या करोगे? कुछ तो ढूंढेगा अभी, डिफेंस मैकेनिज्म क्या ढूंढेगा? सबके सामने ही अपमान कर दिए कोई तो हम ये कहेंगे ना, उसकी तो आदत ही है ये करने की, सबका ही करते हैं, मेरा ही थोड़ी ना किया, तुम्हारा भी किया था ना। हाँ, तो हम अपने आप को कुछ तो करेंगे जिससे मुझे थोड़ी राहत मिले। ये जो मेरा हृदय आहत हुआ है, अंदर से हर्ट हो रहा है, अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, उसको मैं पट्टी कैसे लगाऊं? कुछ तो मैं करूंगा कि नहीं? अच्छा करने की बात नहीं है यहाँ पर, रैशनलाइज करेगा, कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा कारण, चाहे वो ब्लेम हो, चाहे वो कभी कभी अपने आप को ही दोषी कर ठहराएगा, मेरी ही गलती होगी, मैंने शायद गलत बोला होगा, मुझे बिल्कुल आता नहीं है, मेरा चिंतन ही कम है, मेरी वोकैबुलरी कम है, मेरी भाषा इतनी अच्छी नहीं है, मुझे आता ही नहीं, ये लोग तो हिंदी साइड वाले हैं ना, इनको अच्छी हिंदी आती है, मुझे तो हिंदी नहीं आती है, इसके लिए ऐसा कहा होगा। कभी कभी खुद ही को दोषी ठहराएगा, सब कुछ करेगा वो, ये डिफेंस मैकेनिज्म की बहुत बड़ी लिस्ट है, वो बढ़ती जा रही है, उस पर बहुत सारे काम किए, सबसे ज्यादा काम सिगमंड फ्राइड की बेटी ने किए, स्टडी किया उसके पाप ने जो जो कहा था उसके ऊपर, और डिटेल में स्टडी किया, और बहुत सारे मनोचिकित्सक हुए जो पिछले सदी में, उन्होंने इस पर बहुत काम किया, एक एक पर बहुत सारे रिसर्च है, डिफेंस मैकेनिज्म, व्यक्ति जो करता है वो क्यों करता है, उसकी गहराई से स्टडी। इससे हम बाबा जो सेल्फ चेकिंग कहते हैं वो क्या है, यही है। हमें भी पता नहीं चलता है हमें ऐसा क्यों किया, बाद में पता चलता है अरे ऐसा नहीं करना चाहिए तो अच्छा ही था, परंतु कर दिया, और उस समय क्यों किया उसका कोई कारण भी नहीं है, अननेसेसरी कोई लॉजिकल रीजन भी नहीं है, पर किया हमने, क्योंकि अज्ञात से अवचेतन से सब छिपा हुआ है, वो वहां से आ रहा है। और कोई ब्राह्मण जो रैशनलाइज करते हैं, एक तो योग हो गया, मुरली चिंतन हो गया, चार्ट हो गया, चार्ट का भी रैशनलाइजेशन करते हैं, बहुत लिख लिया चार्ट, कुछ नहीं होता है चार्ट बिट लिखने से, देख लिया जो चार्ट लिखते हैं।
बाबा कहते हैं कि परमानेंट नहीं होते
हैं।
योग का चार्ट परमानेंट नहीं करते
हैं। और वो हाँ, दूसरों के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, उसको निकालना ही चाहिए था यहां से, गलती उसने ऐसी की। एक दूसरा यहां तर्क है, मृत्यु दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जघन्य अपराध किया है, मनुष्य जाति में मृत्यु दंड द्वापर से अब तक दिए जाते रहे, मानव बलि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मृत्यु दंड की सजा, आत्मा किस अवस्था में शरीर को छोड़ेगी? हम डिसाइड कर रहे हैं कि उसको मृत्यु दंड मिले, वो शरीर छोड़ेगी आत्मा, और क्योंकि पाप इतना किया है। परंतु सोचने की बात है, इस पर विचार करना। आज की मुरली में बाप क्षमा का सागर है, कोई बाप को फारकती नहीं, बाप को कोई भागंती हो जाते हैं, उन्हें भी बाप कहते हैं क्या? कि फिर से पुरुषार्थ करो। बाप क्षमा का सागर है, जो भागंती होते हैं उन्हें भी बाप कहते हैं कि बच्चे फिर से पुरुषार्थ करो। ये सोचने जैसी। अभी जब हम रैशनलाइज करते हैं कि उसको ये होना चाहिए, उसको यहां से निकाल देना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, हम ये कारण देते हैं। उसमें भी हम ढूंढते हैं ना कारण कि ये है इसलिए, रैशनलाइज। तो और कोई ब्राह्मण जिसमें रैशनलाइज करता है? अरे स्वास्थ्य में तो बहुत ही ज्यादा रैशनलाइज करता है। बुखार जैसा लग रहा है, थर्मामीटर से नहीं देखना, उसमें तो कभी आता ही नहीं। ब्लड टेस्ट करा लो, सारी लैब ठीक नहीं है, हमेशा नॉर्मली रिपोर्ट देती है। एक दो पेशेंट है उनका बड़ी दुखी है, वो खांसी इतनी है पर जब भी टेस्ट कराते उसमें कुछ आता ही नहीं है, ये लैब ही अच्छी नहीं है, बुखार जैसा लग रहा है। तो अमृत वेला थोड़ा सा लेट, बाबा को भी पता है कि तबीयत ठीक नहीं है, वो तो जानता है ना। फिर कल लेट सोए, उसको पता है तो थोड़ा लेट उठेंगे। अनाउंसमेंट भी तो होती है, पहले होती थी, अभी तो बंद हो गई बाबा के आने के दिन। कल सुबह वो एक अच्छा वाक्य था ना बहन जी का, सेंटर की बहनें बड़ी बार बार कहती थी वो वाक्य, कल सुबह 5 बजे अमृत वेले का गीत बजेगा, फिर उसके बाद में ऐसा था ना वो कुछ, अभी तो बंद, फिर उसका बाबा के आने के वहीं पे अनाउंसमेंट होती थी, फिर मुरली 7:30 बजे चालू होगी। तो ये सुनते ही कैसे राहत मिल जाती थी सबको कि अब तो बाबा के इमीडिएट दिन देखो, जिस दिन बाबा आते उसके दूसरे दिन मधुबन में कितनी कम भीड़ होती है। वो भी एक रैशनलाइजेशन है कि आज बाबा आए हैं तो कल हम लेट उठेंगे, वही ना थकान ही रैशनलाइजेशन है। हाँ तो कोई कोई 1 बजे पहुंचते हैं। तो अमृत वेला करना है कि नहीं करना है? यहाँ कहीं लिखा है जिस दिन बाबा है उसके दूसरे दिन अमृत वेला छुट्टी, ऐसा कहीं आया है? हाँ तो क्या थोड़ा लेट, यही तो रैशनलाइजेशन है। तो आज इन बहानेबाजी का चिंतन करना, उससे मुक्त होने के लिए नहीं कह रहे, खाली सोचना है कहाँ है वो, सोचना ही अंडरस्टैंडिंग ही फ्रीडम है। जिससे मुक्त होने का कोशिश करो तो मन में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा फिर, कि मैं ये कर रहा हूं वह नहीं करना चाहिए, ऐसा संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरा फिर ये हो जाता है। इसके लिए क्या करना है? सोचना है। ये अर्जुन अभी ये और 3 श्लोक जो कल होंगे, और उसके बाद में फिर अगले हफ्ते से प्रॉपर जो गीता है उसकी हम शुरुआत करेंगे। ये आज 11वां एपिसोड है। अच्छा, ओम शांति।